जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरिनाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्णा ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल एवरीवन हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्णा हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनके इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को ठीक से समझ सके और अपने जीवन में अपना सके है ना। तो फ्रेंड्स हम सब की आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और इस प्रक्रिया में सरल भगवत गीता का कोर्स हम आरंभ कर चुके हैं है ना। इसमें हमने अध्यात्म से जुड़ी कुछ गलत अवधारणाओं के बारे में बात की थी। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग स्पिरिचुअलिटी से जो डिवोशन से जुड़े कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं गलत अवधारणाएं हैं उनके बारे में हमने कुछ डिटेल में चर्चा की है ना। क्योंकि फ्रेंड्स भगवत गीता का कोर्स शुरू करने से पहले सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाने से पहले हमारे अंदर के गार्डन में जो घास फूस उगी हुई है ना फ्रेंड्स है ना जो भक्ति की गलत अवधारणाएं हमारे अंदर हैं उन्होंने जड़ें फैलाई हुई हैं तो उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अपने हमारे हृदय के अंदर घास फूस रहेगी तो हमारे अंदर भक्ति का सुंदर सा बगीचा नहीं बन सकता है ना। क्योंकि डिवोशन को लेकर स्पिरिचुअलिटी को लेकर समाज में बहुत सारी अवधारणाएं हैं बहुत सारे भ्रम हैं और हम हमेशा उसमें उलझे रहते हैं है ना। तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम सत्संग में चर्चा करने वाले हैं कि भगवत गीता की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। वैसे तो भगवत गीता की अनलिमिटेड शिक्षाएं हैं अनलिमिटेड लर्निंग्स हैं है ना। हर श्लोक अपने आप में एक लर्निंग देता है लेकिन फिर भी कुछ की चर्चा हम करने वाले हैं आज तो फ्रेंड्स भगवत गीता का मतलब सिंपल वर्ड्स में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया गया गीत है जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। जैसे हम लोग डिप्रेस होते हैं या ज्यादा खुश हो जाते हैं तो हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना नए सुनेंगे पुराने सुनते हैं क्योंकि लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं तनाव है तो क्या होता है म्यूजिक या जो सॉन्ग्स होते हैं वो हमारे तनाव को दूर करता है। म्यूजिक से सॉन्ग से गीतों से हमारा तनाव दूर होता है ना। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब तनाव हुआ तो उसने भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत सुना जो कि 5000 साल पहले भगवान ने जो दिव्य गीत गाया 45 मिनट्स का दिव्य गीत गाया जो इतना डीप सॉन्ग था अमृतमय गीत था उस गीत को ही फ्रेंड्स श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता वैदिक नॉलेज जो हमारे सारे स्क्रिप्चर्स हैं उनका निचोड़ है सार है। फ्रेंड जब आज से 5000 वर्ष पहले जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था है ना जब वो युद्ध में उसने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे और वो बैठ गया था युद्ध भूमि में कि इससे तो अच्छा ही ये लोग मुझे मार ही दे मतलब वो अपनी ड्यूटीज निभाने में डर गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है ना। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके क्या कर्तव्य हैं उसको नहीं पता लग रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है ना? तो चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान की शरण लेता है फिर वो जब भगवान का संदेश सुनता है भगवत गीता के रूप में उससे क्या होता है अर्जुन कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पे वो डर रहा था उस डिप्रेशन की अवस्था से वो त्रिश्य वचनम तवा में आ जाता है। 18th चैप्टर में आएगा ये वर्स कृष्य वचनम तवा का मतलब कि जो आप मुझे कह रहे हो भगवान हे प्रभु आप जो मुझे कह रहे हो मैं अब वो ही करूंगा जो आप चाहते हो कि मैं ये करूं मैं बस वो ही करूंगा अब से मैं वो ही करूंगा। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पे वो डर रहा था है ना डिप्रेस हो गया था अपनी जो ड्यूटीज थी उनको निभाने से वो डर रहा था तो उस अवस्था से वो किस अवस्था में पहुंच गया कृष्य वचनम तव कि जो परमात्मा आप चाहते हो, हे भगवान जो आप चाहते हो कि मैं ये करूं, मैं अब से वो ही करूंगा, मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगा, अब जो आप कहते हो, जो आप मुझे गाइडेंस दोगे, मैं वो ही करूंगा। फिर क्या होता है, फाइनली पांडवों को सफलता मिलती है उस युद्ध में। वो सफलता क्यों मिली फ्रेंड, सोचो ना, वो खाली अर्जुन को ही वो ज्ञान मिला? पूरे महाभारत के युद्ध में कितने सारे लोग थे, है ना, किसी को भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मिला, क्योंकि अर्जुन में वो क्वालिटीज थी, भगवान उसको ऑब्जर्व करते थे, बचपन से ही उसको देख रहे थे, है ना। अर्जुन में एक सर्टेन लेवल की क्वालिटीज थी, दिव्य गुण थे, जिसके कारण अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान मिला। तो वो डिप्रेसिंग स्टेज से कॉन्फिडेंस वाली स्टेज में आ पहुंचा। भगवत गीता फ्रेंड सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। वो शोकग्रस्त अर्जुन वो कंफ्यूज्ड ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हम सबको रिप्रेजेंट करता है। हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड, जिनके आंसर्स हमें कभी नहीं मिले, क्योंकि हमें कभी इस तरह की पढ़ाई हमें करवाई नहीं गई, ना घर में, ना स्कूल कॉलेजेस में, है ना। कई बार हमारे अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि क्या यही जीवन है, क्या खाना पीना सोना और चले जाना, एक दिन कुछ तो लाइफ का पर्पज होगा, है ना। कई बार आते हैं क्वेश्चन, एक्चुअली मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से, जाऊंगा कहाँ पे, है ना, या लाइफ में मुझे ही दुख क्यों मिलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आते हैं ना ये क्वेश्चन। डेथ के बाद क्या होगा, जन्म से पहले क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, मुझे करना क्या चाहिए, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता हमें करना क्या है, कौन सा डिसीजन हमें लेने चाहिए, इवन खाना कैसा खाना है, इवन जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, पता ही नहीं लगता हमें। फिर क्या होता है, जैसे जिंदगी हमें चलाए रखती है, हम वैसे जिंदगी जीते रहते हैं। तो दुनिया के सारे सवाल, जिनके आंसर्स हमें कहीं नहीं मिलते फ्रेंड्स, वो सारे सवाल अर्जुन ने पूछे हमारे लिए, हम कंफ्यूज ह्यूमन बीइंग्स के बिहाफ पे। अर्जुन ने एक रोल प्ले किया महाभारत के युद्ध में, कंफ्यूज ह्यूमन बीइंग का हमारे लिए फ्रेंड्स। जैसे अर्जुन कंफ्यूज था, सेम सिचुएशन हमारी होती है फ्रेंड्स, हम भी अर्जुन की तरह ही कंफ्यूज होते हैं, डरे रहते हैं, चिंता में रहते हैं, पास्ट फ्यूचर की चिंता में रहते हैं, हमेशा डिप्रेस रहते हैं, आज में तो हम जीते ही नहीं, प्रेजेंट में तो हम रहते ही नहीं, जो पास्ट में कुछ हो जाता है उसके बारे में सोचते रहेंगे, या फ्यूचर में जो कुछ हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग की हैबिट में पड़े रहते हैं, है ना। तो हमें ये पता नहीं होता फ्रेंड्स कि करना क्या चाहिए। वो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे हैं जो परफेक्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चंस भी तो पता होने चाहिए ना, कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए हमें। तो अर्जुन ने परफेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, और सिर्फ भगवान ही हमें परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं। तो भगवद गीता एक परफेक्ट क्वेश्चन और एक परफेक्ट आंसर बुक है। अर्जुन ने पूछे परफेक्ट क्वेश्चंस हम कंफ्यूज ह्यूमन बीइंग्स के बिहाफ पर, और परफेक्ट आंसर दिए स्वयं भगवान ने, क्योंकि भगवान ही परफेक्ट है, वो ही आंसर दे सकते और कोई नहीं दे सकता, है ना। लेकिन इन बातों को फ्रेंड्स हम समझेंगे कैसे, कई बार हमें लगता है कि संस्कृत में कैसे समझेंगे, भगवत गीता हमारे स्क्रिप्चर्स तो संस्कृत में है, हम कैसे समझेंगे। कई बार हमें लगता है कि यार मुझे तो शॉपिंग पे जाना है, है ना, या कई बार हमें लगता है कि मुझे जॉब पे जाना है, बिजी हूं मैं, मुझे सोना है, है ना, कितनी उलझने हैं हमारी लाइफ में, तो कैसे भगवत गीता पढ़े। लेकिन फ्रेंड्स मेन पर्पज है कि हम भगवत गीता को सिंपल वर्ड्स में प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर कैसे समझे, और फिर कैसे उन लोगों तक समझाएं जो हमें सुनना चाहते हैं। हमें इतनी तो भगवत गीता आनी ही चाहिए ना, चलो सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो भगवत गीता सारे स्क्रिप्चर्स का सार है, सारे वैदिक ग्रंथों का सार है, तो हमें कम से कम भगवत गीता तो आनी ही चाहिए ना, ताकि हम, और नहीं तो कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, जब वो डिप्रेसिंग स्टेज में हो तो हम उनको समझा सके, या वो उस स्टेज में पहुंचे ही नहीं उससे पहले ही हम उनको गाइड करना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो होगा कैसे, जब हमने खुद भगवत गीता पढ़ी होगी, जब हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी हो तभी हम दूसरों को पॉजिटिविटी बांट सकते हैं ना, है ना, क्योंकि हम लोग चाहते तो हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, हमसे जुड़े जो लोग हैं वो भी अपना अच्छा जीवन जिए, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, उनका अच्छा जीवन हो, पॉजिटिविटी के साथ वो लाइफ जिए, है ना। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है फ्रेंड्स, जब हमारा जीवन पॉजिटिव हो, तो भगवद गीता उसी का एक आसान तरीका है। और सबसे बड़ी बात है गोलोक एक्सप्रेस एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, आप घर बैठे बैठे, सबसे अच्छा मुझे यही लगा था कि मैं ज्यादा बाहर जा नहीं सकती हूँ तो मुझे घर बैठे बैठे भगवद गीता का ज्ञान मिल गया। मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि मुझे भगवद गीता पढ़नी है, भगवद गीता पढ़नी है। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, हम लोग कभी अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते, मुझे ये बहुत बात रहती थी मन में, है ना। और जब मुझे मौका मिला भगवद गीता पढ़ने में, और भी घर बैठ के, कहीं मुझे जाना नहीं है, कहीं तैयार नहीं होना है ना, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा था मुझे, है ना। तो हमें कहीं नहीं जाना है, घर बैठे बैठे, या आप ट्रैवलिंग के टाइम जब हम फ्री होते हैं तो हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू हम अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, है ना। अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग्स आप अपना भगवद गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है एक्चुअली इसमें लिखा क्या है, है ना। ऐसे तो हम कोई किसी कुछ बोल रहा है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो हमें कुछ पता नहीं होता, मतलब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा जो जिसने सुनी नहीं होगी भगवद गीता, तो वो क्या बोलेगा कि यार पता नहीं ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, है ना। तो जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो हमें अनुभव नहीं होंगे, है ना। अपने जीवन व्यन में जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं हम खुशी, है ना, चले होते हैं कहीं बाहर शॉपिंग करने, बाहर फॉरेन टूर चलेंगे, है ना, निंदा चुगली में बिजी रहेंगे, तो करते क्यों है, क्योंकि हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं खुशियां, जबकि वो खुशी हमारे अंदर ही है, है ना। तो भगवत गीता के द्वारा हम इनर पीस और इनर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं फ्रेंड्स। और ये जो इनर पीस और जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये हैप्पीनेस जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी ओवरऑल लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है फ्रेंड्स। जो हैप्पीनेस पीस जो हमें मिलती है और जो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें आती है फ्रेंड्स, उसके द्वारा हमारे हमारे बच्चे, हमारी फैमिली मेंबर्स ये सब अडॉप्ट करते हैं, उनमें ट्रांसमिट होती है हमारी वाइब्रेशंस। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम पॉजिटिविटी बांट पाएंगे ना, फिर खुद ही नेगेटिव रहेंगे, खुद ही दुखी रहेंगे, हर वक्त डिप्रेसिंग बातें करते रहेंगे तो दूसरों को क्या दे पाएंगे, दुख ही देंगे फिर। जो अपने पास हम वही दूसरों को बांटते हैं फ्रेंड, सिंपल बात है, है ना। तो भगवत गीता में 1 से लेकर 18 चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, है ना। हर एक चैप्टर सोल की डिफरेंट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। 18 चैप्टर मीन्स हाईएस्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, जहां पे वो बोलता है कृष्य वचनम तवा। और फर्स्ट चैप्टर इज लोएस्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, जहां पे वो बोलता है कि इससे अच्छा है कि वो ये लोग मुझे मार दे। ये फर्स्ट चैप्टर का अर्जुन है, और 18 चैप्टर का अर्जुन क्या बोलता है, कृष्य वचनम तवा, जो आप कहते हो कृष्णा, जो आप कह रहे हो मुझे वो ही करना है, मेरा जो मन कहता है, मेरे जो रिश्तेदार कहते हैं, मेरे जो आसपास के लोग कहते हैं, मुझे वो नहीं करना है, मुझे अब वो करना है जो आप मुझे कह रहे हो। यहाँ पे पहुंचना है हमारा लक्ष्य। तो हम सब कहाँ पे, हम सब फर्स्ट और 18 के बीच में है, हम तो कहीं फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में घूम रहे हैं फ्रेंड्स। चैप्टर 1 से हम अपने आप को साइकोलॉजिकल लिंक कर सकेंगे, कैसे अर्जुन की लाइफ और हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, और कैसे भगवद गीता हमारी आज की लाइफ में भी रेलिवेंट है। हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है फ्रेंड्स भगवद गीता में। जो बातें हमें ऑलरेडी पता है, इसमें मैक्सिमम बातें आप बोलोगे यार ये तो मुझे पता है, यार ये तो मुझे पता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो हम उसको अपना सके, उसको अप्लाई कर सके जीवन में, इम्प्लीमेंट कर सके जीवन में। पता तो हमें बहुत कुछ है, तो क्या हमने उन चीजों को अपना लिया कि हम फिर वही अपना मनगढ़ंत जीवन जिए जा रहे हैं, है ना। तो जो बातें हमें ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, उनको समझ के अपने जीवन में उतारना है। तो आज हम भगवद गीता की, वैसे तो अनलिमिटेड लर्निंग्स हैं, उसमें से कुछ लर्निंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना फ्रेंड्स। भगवद गीता हमें बताती है, फर्स्ट पॉइंट इसका है, मानव जीवन एक सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि हम वास्तव में कौन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले भगवद गीता हमें समझाती है कि मनुष्य जीवन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये समझने के लिए कि एक्चुअली हम वास्तव में है कौन, है ना। जब हमसे कोई पूछता है कि आपका नाम, कि आप कौन हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपना नाम बताते हैं, अपना एजुकेशन बताएंगे, है ना। जैसे मेरे से पूछेंगे आपका नाम, आप कौन हो, तो मैं क्या कहूंगी, मेरा नाम मोना है, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं पुणे में रहती हूँ, है ना। या कोई पूछेगा एजुकेशन, तो ज्यादा एजुकेशन बता दूंगी, घर के बारे में बता दूंगी, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, ये बॉडी की पहचान है ना, जो हम बात कर रहे हैं ये हमारी बॉडी की पहचान है ना। सिंपल बात है फ्रेंड, जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ही खुश करने में लगे रहते हैं, शरीर को सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप सपना देख रहे हो, है ना, तब आपको सच लगता है ना, उस वक्त थोड़ी पता लगता हमें कि सपना है या सच है, उस वक्त हमें सच लग रहा होता है। जब हम नींद से उठते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो सपना था। होता है ना कई बार बहुत बुरा सपना आया तो हमें लगता है अच्छा हुआ सपना ही था, वो कोई अच्छा सपना था तो हम उठ जाते तो यार वो तो बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा था, सच में ही हो रहा है मेरे साथ ऐसा, है ना। तो ये सबने एक्सपीरियंस किया होता है ना। तो जब वो सपना चल रहा होता है ना तो आपने मान लिया होता है कि मैं मोना हूँ, है ना, आप नीना हो, ममता हो, है ना, आप लड़का हो, लड़की हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, है ना। तो इसको माया कहते हैं, जो हम शरीर से रिलेटेड अपनी पहचान में खोए रहते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको माया कहते हैं फ्रेंड्स। जब सपना सच लगेगा तो ये भी सच लगेगा कि ये ही सच है, है ना। फिर जागना क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जब भगवत गीता का ज्ञान हमारी बुद्धि में आएगा और जब हम सत्संग साधना सेवा सदाचार का अभ्यास करते हुए नित्य निरंतर इस रास्ते में चलते रहेंगे, समझ आए या ना आए, हमें चलना है मतलब चलना है। कम से कम ये तो होना चाहिए कि मुझे भगवत गीता अपने लाइफ में पढ़नी है एक बार, है ना। तो अपने आप भगवत कृपा मिलेगी, फिर क्या होगा, आपके अंदर से हृदय से आप प्रकाशित हो जाओगे फ्रेंड्स। अंदर से, अंदर जो अज्ञान का अंधकार है ना, हमारे अंदर अज्ञान है एक्चुअली, जो हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने मन के अकॉर्डिंग चले हुए हैं, तो वो क्या है, वो अज्ञान है ना। तो भगवान भगवत गीता के द्वारा हमें प्रकाशित कर देते हैं, ज्ञान से हृदय से प्रकाशित कर देंगे भगवान हमें, तो असली ज्ञान फिर बाहर आता है। और जब असली ज्ञान बाहर आता है तब आप जागृत अवस्था में आ जाते हो, जिसको बड़े बड़े सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन या रियलाइज सोल, है ना, या इसके ज्ञान चक्षु है, एनलाइटनमेंट, महात्मा। महात्मा जरूरी नहीं है कि बस वो ऑरेंज जैसे या पीले जैसे कपड़े पहने हुए हैं तो वो महात्मा है, जो अपने आप को जान लेता है, है ना, वो भी महात्मा ही है, वो घर में भी रह सकता है, जरूरी नहीं है उसको जंगलों में जाना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेंड मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, ये सब कुछ डेथ के बाद नहीं होता, ये यही हो जाता है, यहीं पे होता है सब कुछ, सब कुछ यही है जीवन में, इसी जीवन में। हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो भक्ति तो कुछ मोक्ष की बात है, मुक्ति की बात है, ये तो बाद की बात है, डेथ के बाद की बात है, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते ना उसके लिए, हमें कुछ करना नहीं है। और जिस अगर हम कुछ करने का सोच लेते हैं अच्छा या बुरा, तो उसके लिए हम टाइम भी बनाते हैं, है ना। तो ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये सब हमारी इसी लाइफ में होगा, डेथ के बाद कुछ नहीं होगा, है ना। तो भगवत गीता हमें सोने की अवस्था से उठाकर हमें जगाना, रियलिटी की पहचान करवाती है, है ना। तो जब आप जाग जाओगे फ्रेंड्स तो आपको लगता है, तो आपको समझ आ जाएगा यार ये तो सपना था, हकीकत तो कुछ और है। तो भगवत गीता कौन सा रोल प्ले करने वाली है हमारे लिए, जैसे आप एक बहुत सुंदर सपना देख रहे थे और आपकी माता जी ने सुबह 5 बजे आपको धक्का दिया, उठ जा, कितना टाइम हो गया, उठ जा, पढ़ाई कर ले, हम उठाते हैं ना अपने बच्चों को, तो ऐसे भगवत गीता हमारे लिए रोल प्ले करती है, उठाती है हमें सोए अवस्था से जागृत अवस्था में कर देती है। हम लोग उठते हैं तो हमारा सपना टूट जाता है। तो माता जी ने कौन सा रोल प्ले किया हिलाकर जगाने वाला, वो भगवत गीता का काम है फ्रेंड्स। भगवत गीता का सत्संग अगर हम करते रहेंगे, नित्य निरंतर चलते रहेंगे, बिना किसी इफ बट के चलते रहेंगे सिंसेरिटी से, भगवान में थोड़ी सी भी श्रद्धा है अगर, किसी भी भगवान, है ना, तो हमारे अंदर की रियल नॉलेज है ना, क्योंकि भगवान के अंश होने के कारण वे सारी बातें हम जानते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं, कोई नई बातें नहीं सुन रहे हम, सब कुछ हमें पता है, बहुत बार हमने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन क्या होता है कि हम भूले हुए होते हैं, हम अपनी दुनियादारी में खोए हुए होते हैं, हम परमात्मा से अपना रिश्ता खोए हुए होते हैं, भूले हुए होते हैं, है ना। तो वैसे ही माया के कारण हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, अंश है उनके, तो हमें अल्टीमेटली भगवान के पास ही जाना है। इसलिए हमारे साथ सपने में जो जो हमारे साथ हो रहा होता है, कि दुख का समय आया तो डिप्रेस हो गए, सुख का समय आया तो एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इस तरह से हमारे साथ चलता रहता है ना, हमें दुख में डील करने आता है ना हमें सुख में डील करने आता है। सुख आएगा तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और दुख आएगा तो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, है ना। तो भगवत गीता हमें अवेकनिंग एनलाइटनमेंट की स्टेज पर, आत्म साक्षात्कार की स्टेज पर लेकर आ जाएगी, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा लाइफ का, आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं एक शरीर ही नहीं हूँ, उस शरीर के अंदर एक आत्मा हूँ, जिसको एनर्जी भी कहते हैं, सोल हूँ, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो उसको, और आपका एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है, हम सबका एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है, वो है परमात्मा के साथ, पर हम लोग यहाँ पे अलग अलग रिलेशनशिप निभाने आते हैं और फिर हम दुखी होते रहते हैं। इसलिए हम दुखी होते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और इस शरीर से जुड़े जो हमारे रिलेशंस हैं, जब उनसे दुख मिलता है तो फिर हम दुखी होते हैं। जब हमारे लव्ड वन हमें छोड़ के चले जाते हैं तब हमें दुख मिलता है, जब हमें कुछ हार्श वर्ड बोल देते हैं तब हमें दुख मिलता है ना। लेकिन हम जब सोच लेंगे कि यार मैं एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ और मुझे एज आत्मा मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, और मेरा एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है वो है परमात्मा के साथ, है ना, जिनको अलग अलग फेथ सिस्टम में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, है ना, भगवान शिव, माता रानी के नाम से, अल्लाह, क्राइस्ट, है ना, तो अलग अलग नामों से भगवान को पुकारा जाता है। दोनों ही चीजें फ्रेंड, शरीर और आत्मा दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन माया का मतलब हम लोगों ने बॉडी को ही सब कुछ समझ लिया और अपने आप को यानी कि सोल को ही हम भूल जाते हैं। भक्ति का मतलब है कि मैं एक सोल हूँ और भगवान ने मुझे बॉडी दी है ताकि मैं इसको सही तरह से यूज करूँ, इसका सही तरह से चलाऊ अपनी बॉडी को भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, ताकि मेरी आज की लाइफ बेटर हो सके, अपनी आज की ड्यूटीज को मैं ठीक तरह से निभाऊं ताकि मेरी आज की लाइफ ही बेटर हो। ये जो मनुष्य योनि है फ्रेंड्स, ये भगवान ने हमें दी है ना, ताकि मैं परमात्मा के साथ अपने भूले हुए संबंध को जागृत करके अल्टीमेटली भगवान के पास वापिस जा सकूं। तो भगवत गीता हमें वहां तक लेकर जाएगी और इस बात को समझ पाना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लर्निंग है भगवत गीता की, भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में उत्तम तरीके से अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें और अंत में अपने वास्तविक व स्थायी घर यानी बैकुंठ या गोलोक धाम वापिस कैसे जाएं। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात हम भगवत गीता से समझेंगे कि हम बेसिकली अपनी लाइफ की ड्यूटीज को बेस्ट तरीके से कैसे निभाएं। उसके लिए फ्रेंड्स अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है ना। जैसे एक डिग्री भी लेनी है ना, हमें इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है या टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसका एक प्रोसेस है ना। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th करो, फिर 12th करो, फिर कॉलेज करो, फिर हायर स्टडीज के लिए जाओ, है ना, फिर कहीं डॉक्टर बनते हैं। 25-26 साल लग जाते हैं फ्रेंड्स इस सारे प्रोसेस में, है ना। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हम कोई टाइम नहीं निकालते फ्रेंड्स, कोई समय नहीं बनाते। मटेरियल नॉलेज के लिए तो हम टाइम बनाते हैं, समय बनाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली एडवांसमेंट के लिए हम कोई समय नहीं बनाते, है ना। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे एक किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, या एक अच्छी वाइफ ही क्यों ना बनना है, अच्छी डॉटर बनना है, अच्छी मदर बनना चाहते हो, अगर अच्छे फादर बनना चाहते हो, है ना, तो हमें अपनी सारी ड्यूटीज को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। अपनी मटेरियल लाइफ में देखो, अगर हम साइंस या अपने आर्ट्स में ही कोई अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे ना कि कोई ट्यूटर मिल जाए। वैसे ही बेस्ट कौन बता सकता है फ्रेंड, जो स्वयं बेस्ट है। और बेस्ट कौन है, स्वयं ईश्वर, परमात्मा के अलावा कोई बेस्ट नहीं है फ्रेंड्स। बेस्ट की गाइडेंस ही, ईश्वर की गाइडेंस ही भगवद गीता है। जैसे अर्जुन फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र की युद्ध से पहले कंफ्यूज था, जब उसने भगवान से गाइडेंस ली तो वो युद्ध में सक्सेस भी हो गया। वैसे ही फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र का युद्ध हमारे लिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। जैसे हम अगर हाउस वाइफ है तो हमारी गृहस्थी ही हमारा कुरुक्षेत्र है। इसमें कंफ्यूजन्स, फ्रस्ट्रेशंस, फियर्स, ये सब आते रहते हैं। अगर हम भगवान की गाइडेंस लें और उसको जीवन में उतारे तो हमारी करंट प्रैक्टिकल लाइफ को भी हम अच्छी तरह से निभा पाते हैं फ्रेंड्स, है ना। और डेथ तो सबको आनी है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिसने अपनी लाइफ में भगवान की बातें सुनी होंगी उसको अपने जीवन में उतारा होगा, जो अपने करंट लाइफ है वो तो अच्छी तरह से निभा पाएगा ही, लेकिन डेथ के बाद भी फाइनली वो भगवान के धाम, जो कि परमानेंट हमारा घर है, फाइनली जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर जा पाएगा। नेक्स्ट लर्निंग है भगवत गीता की, संपूर्ण जगत को एक ही परिवार के रूप में देखना तथा शांति व सद्भाव से सबके साथ मिलजुल कर रहना। तो भगवत गीता फ्रेंड्स हमें सिखाती है इस पूरे जीवन में पीसफुली, हैप्पीली और सद्भावना से सब लोगों से तालमेल बनाकर कैसे जिए। मतलब भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। भगवत गीता हमें फ्रेंड सब कुछ सिखाती है, हमें खाना क्या चाहिए, हमें पानी कैसे पीना चाहिए। आप देखना आगे आगे भगवत गीता में जब स्टार्ट होगी तो कितना मजा आने वाला है आपको, पूरा जीवन जीना सिखा देती है भगवत गीता, है ना। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, खुश रहना सिखाती है। और क्या सिखाती है कि अपने परिवार के कॉन्सेप्ट को अपने चार लोगों के अलावा वसुदेव कुटुंबकम यानी कि मेरे परिवार में देखना शुरू करो। संसार में फ्रेंड्स पूरे झगड़े का कारण ही मेरा और तेरा है, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन, बस इसी में उलझे हुए हैं हम। जैसे परमानेंट रहने आए हुए हैं हम, दुश्मनियां बना के रखते हैं हर वक्त हर किसी से, है ना। इससे कैसे ऊपर उठें और कैसे इस संसार को परिवार समझें, ये हम समझने वाले हैं, है ना। ऐसा कैसे समझें कि ये पूरी दुनिया हमें एक परिवार की तरह लगे और इस परिवार का हेड भगवान है, भगवान श्री कृष्णा स्वयं है, है ना। कुछ लोग इसको एक नाम से पुकारते हैं, कुछ दूसरे नाम से, अल्टीमेटली सब एक ही है, है ना। लेकिन अज्ञान के कारण हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि मैं तो शिवजी भगवान को मानती हूँ, यहाँ पे तो कृष्ण भगवान की बात होती है, या तो मैं तो माता रानी को मानती हूँ और तुम तो शिवजी भगवान को मानते हो। तो अक्सर अज्ञान के कारण हम लोग झगड़ना शुरू करते हैं, और जो मेन पर्पज है हमें भगवद गीता समझना, जो कि भगवान की वाणी है और परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर बुक है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो अपने मिथ रखे हुए हैं हम लोगों ने, है ना, हमारे अंदर जो अवधारणाएं फैली होती हैं उनको हटा के बिल्कुल शांत मन से हमें भगवद गीता भगवान की वाणी को सुनना चाहिए। और हम लोग कहाँ उलझे, नहीं नहीं तेरे भगवान से तो मेरा भगवान ज्यादा बड़ा है। भगवान फ्रेंड्स एक ही है, वो अपनी पावर से अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भगवान एक ही है जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है, उसी ईश्वर के बच्चे हम है ना। इस बात को समझना कि ये जो परिवार है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन तक सीमित नहीं है फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों तक की सीमित नहीं है। पूरे झगड़े का कारण ही यही है कि आजकल लोग बिल्कुल सीमित परिवार में आ गए हैं, बस मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे मेरे पेरेंट्स, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचना चाहते, बाकी सब हमारे दुश्मन है। ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है, इस तरह से हमें जीना है कि सभी अपने, कोई भी पराया नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा जीवन जीना हमें भगवद्गीता सिखाती है। भगवद्गीता की 4th लर्निंग्स है, संपूर्ण सफलता और खुशी का वास्तविक अर्थ। तो भगवान भगवत गीता में हमें ये समझाने वाले हैं कि खुश कैसे रहना है ना। दुनियादारी में फ्रेंड्स सक्सेस की परिभाषाएं अलग अलग होती है। दुनियादारी में क्या होती है सक्सेस की परिभाषा, हम उसको सक्सेस मानते हैं फ्रेंड्स कि किसने कितना पैसा कमा लिया, कितने बंगले हैं, कितनी बड़ी कारें हैं, है ना। लेकिन आप आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे कि किसी के पास तो बहुत पैसा है लेकिन वो डिप्रेस्ड है, दुखी रहता है हमेशा, रहती है या रहता है, तो क्या आप उसको सक्सेस मानोगे। मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत सारी कारें हैं, बहुत बड़ा घर है, बहुत नेम फेम है, लेकिन वो हमेशा डिप्रेसिंग स्टेज में रहती है या रहता है, हमेशा दुखी रहती है, खुद भी दुखी रहती है, दूसरों को भी दुखी करती है या करता है, है ना। तो क्या आप उसको सक्सेस मानोगे, हैप्पीनेस मानोगे। एक तरफ एक व्यक्ति बिल्कुल छोटे से घर में रहता है या मान लो झोंपड़ी में भी रहता है तो वो बहुत खुश रहेगा, तो वो सक्सेस है या वो सक्सेस है जो इतना सब कुछ मिल गया लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करना है और क्या नहीं मिला बस उसके बारे में पूरा सोचते रहो, खुद भी दुखी रहो दूसरों को भी दुखी करते रहो। हम ऐसा जीते हैं, हम उसको सक्सेस मानते हैं कि यार अच्छा उसके पास इतना घर है, इतनी बड़ी कारें हैं, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको सक्सेस मानते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली हमें समझ नहीं होता कि उसकी एक्चुअली लाइफ कैसी चल रही है, हमें नहीं पता होता ना, इसलिए हमें उसका बाहर का जीवन हम देखते हैं। कंप्लीट सक्सेस क्या होती है फ्रेंड्स, जब हम इनर लेवल पर हैप्पी हो जाते हैं, अंदर से हैप्पी हो जाते हैं, बाहर कुछ भी हो रहा है, बाहर कितने भी दुख क्यों ना हो, पता है यार ये चले जाने हैं, इतना क्यों दुखी होना मुझे, जब मैं सुख के टाइम इतनी सुखी हो गई थी, इतना खुश एक्साइटेड रहती थी, अब मुझे दुख के टाइम क्यों इतना डिप्रेस हो जाना है ना। तो हमें डील करने आ जाता है अपने सुखों और दुखों को, खुशी में हम फिर इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे और जब दुख आएगा तो हम इतना ज्यादा डिप्रेसिंग स्टेज में नहीं चले जाएंगे, है ना। एक्चुअली हैप्पीनेस का मीनिंग हमें समझ आ जाता है कि एक्चुअली हैप्पीनेस होती क्या है। तो ये भगवद गीता आपको इंटरनल हैप्पी कर देगी, बाहर कुछ भी हो रहा हो आप अंदर से मस्त होंगे झूमते हुए, है ना। तो जब हम इनर लेवल पर सक्सेसफुल फील करते हैं ना फ्रेंड्स, तब हम कंप्लीटनेस की तरफ जाते हैं। ये कंप्लीटनेस हम भगवद गीता से सीखेंगे, है ना। वर्ल्डली लाइफ में तो लोगों ने बहुत कुछ, लोगों के पास होता है बहुत धन कमाया होता है लोगों ने, फिर भी वो अधूरापन फील करते हैं फ्रेंड्स, हमेशा कहते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ कमी है, कुछ कमी है। वो कमी क्या होती है, वो कमी है भगवान से कनेक्शन इनकम्प्लीट है, इसलिए हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उसको फील नहीं कर पाते और हम अधूरापन फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास सही नॉलेज नहीं है, परमात्मा से कनेक्शन नहीं है हमारा, इनकम्प्लीट है हम लोग, सही नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, है ना। आप खुद ही सोचो फ्रेंड, मान लो उसको मटेरियली बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन हमेशा वो चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, क्रोध में भरी रहता है कोई, है ना, लालच में होगा, ईर्ष्या में अगर कोई ग्रस्त हो, तो क्या वो सच में सफल है, क्या वो खुश रह सकता है फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, क्या पैसा ही सफलता है आपके हिसाब से। है ना। तो भगवत गीता के अध्ययन से फ्रेंड्स हमें राइट नॉलेज मिलती है, हमारी बुद्धि दिव्य होती है, मन स्थिर व शांत रहता है और हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज, दिव्य गुण जैसे कि किसी को क्षमा करना, विनम्रता, प्रेम, दया, धैर्य, पेशेंस, ये सब गुण बढ़ते हैं। और जो डेमोनिक क्वालिटीज होती हैं, जो आसुरी गुण होते हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, ये सब गुण घटते हैं प्रतिशत में। तो ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स, जो व्यक्ति प्रतिशत में अपनी डेमोनिक क्वालिटीज घटाता हुए चलता है और प्रतिशत में अपनी डिवाइन क्वालिटीज को, अपने दिव्य गुणों को बढ़ाते हुए जाता है, ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स आनंद में रहता हुआ एक बेस्ट जीवन जीता है। और सही मायने में यही असली सफलता है। और भगवान के गाइडेंस के अनुसार ही हम फ्रेंड्स बेस्ट जीवन जी सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, एवरीवन हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। वंडरफुल सत्संग मोना जी, वंडरफुल सत्संग। सच में ऐसे लगता है कि श्री कृष्णा जी आपकी वाणी में विराजे हुए हैं और उन्हीं की वाणी को आप हमें इस तरह इतने सिंपल वे में हमें समझाते हैं, हर एक छोटी से छोटी बात जो हमें समझ आ जाती। तो सच में मोना जी, मुझे तो ये लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण आपकी वाणी में, आपकी बुद्धि में विराजे हैं, जो इतना अच्छे हमें सरल तरीके से हमें जीवन कैसे जीना है ये सिखाते हैं, सिखा रहे हैं। और अभी भी हमने आपने जो आज का सत्संग में एक एक बात बताई, सच में मैं अपना कहूँ तो ये सब मुझे पता सब होता है, पर जब से भगवद गीता पढ़नी शुरू की है और रियलाइजेशन हो गई है अपने बारे में, क्योंकि पहले जब हम नहीं पढ़ते थे तो इन बातों को हमें पता नहीं ये बातें क्या होती हैं। सच में जब ब्लेसिंग्स की बात की कि हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिली होती हैं, हम उनको काउंट ही नहीं करते हैं। इस बात को तो मैं भी मोना जी कई बार सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, जो इतना कुछ मिला उसके बारे में हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, थैंक यू नहीं करते भगवान का। जो एक चीज हमें नहीं मिलती है उसके बारे में हम हर वक्त रोना ही रोते रहते, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, उसको मिल गया। तो जब से भगवद गीता पढ़ी है सच में ये सारे मिथ दूर हो गए हैं कि खुशी जो है हमें अंदर से, जो हमें एक खुशी मिल रही है, बॉडी लेवल से हमने सोचना बंद कर दिया कि हम एक बॉडी है। जैसे आपने भी वैसा समय बताया कि हम बाहरी आवरण को देखते हैं कि मैं, मेरा नाम और उसके पहचान से अपनी पहचान समझते हैं कि यही हमारी पहचान है। जब से हमने मतलब जो आपके सत्संग के माध्यम से कह कि हम सोल हैं, हम है, हमें कैसा मतलब अपने व्यवहार को कैसे रखना है, कैसे आचरण में लाना है, नहीं तो हम बात कुछ करते थे मतलब दिमाग में कुछ चल रहा था, जीवन से कुछ निकल रहा था और करते कुछ थे, कहते कुछ थे, ये सब जो मिथ थे, सच में ये जो एक हमारी क्लैरिटी आई है ना भगवद गीता पढ़ने से मोना जी, बहुत बहुत ही अधिक मतलब फर्क पड़ा है। और जो सत्संग के माध्यम से जो हमें बातें बताई जाती हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट भी जब से मैंने शुरू किया करने, तो सच में सारी अपनी क्लैरिटी दूर होती गई। तो आज का वंडरफुल सत्संग मोना जी, सच में बहुत ही अच्छी तरह आपने हमें अपनी लाइफ के मिथ और बताया कि हमें कैसे भगवान ने हमें क्या बना के भेजा है, हम जो उलझनों में फंसे रहते हैं। तो जो अर्जुन की कंफ्यूज रहते थे वो तो हमने अपनी लाइफ से भी अपने खुद को रिलेट करके, हमारी उलझने तो कुछ भी नहीं है श्री मतलब अर्जुन के उलझनों से बोला जाए तो, कि उनकी समस्याएं तो बहुत ही, हम अपनी छोटी सी समस्या को इतना बड़ा पहाड़ लेके बना लेते हैं छोटी सी समस्या को। तो जो आपने भी बताया कि सच में जब हम खुशी के टाइम में इतना खुश रहते हैं तो वो खुशी नहीं देखते, तो समस्या कोई के लिए एक जो आ गया, दुख आ गया कोई, तो उसको ही रोना बना के बैठते थे, हाय हाय हमारे जीवन में ये दुख आ गया। तो ये सब सीखा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया कि हमें कैसे इन चीज़ों से बाहर आके अपनी लाइफ को कैसे मतलब आगे बढ़ाना है, हर काम को करते हुए भगवान ने जो हमें ड्यूटीज़ दी हैं निष्काम भाव से करनी है। हम भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान ने हमें बना के भेजा, पर हम ये संसार में रहते हुए, माया में रहते हुए संसारिक लोगों के आकर्षण में बंध जाते हैं और हम अपने जीवन को वैसा ही बनाना शुरू कर देते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू ममता जी एज ऑलवेज। और बिल्कुल, बस जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो अपने आप ही जीवन अपने आप ही बेस्ट होता जाएगा ना, उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें, जो जो चीज समझ आएगी उसको अपने आप ही इम्प्लीमेंट करते चलो, तो अपने आप ही लाइफ बेटर होती जाएगी, है ना। तो लाइफ बेटर करनी है तो भगवद गीता हमें सुननी चाहिए, है ना, अच्छी तरह से उसको सुनो, इम्प्लीमेंट करो और जीवन में खुशियां लाओ, सिंपल बात है। हरी बोल। हाँ जी, कोई और है लिंक शेयर करना चाहता है? हरी बोल।
हरी हरी बोल।
हाँ जी, हाँ जी, कुमुदी जी बात कर लो।
हरी हरी बोल मुन्ना दी एंड एवरीवन ऑफ द ग्रुप। आज का सत्संग भी हमेशा की तरह जो हम आपके सरल सरल और मधुर वाणी में सुनते हैं बहुत ही आनंददायक था। तो आज की जो आप बता रहे हैं कि भगवत गीता की जो मुख्य बातें हैं उससे जो मेरी जो लर्निंग बनती है या जो आप बता रहे हैं कि वाकई जो ये हमारा जीवन है ना, ये एक हमारा सुनहरा अवसर है हमें ये जानने के लिए कि हम है कौन। अब तक तो हम अपने अपने आप को जैसे शरीर ही मानते हैं ना, और ये तब तक मानते हैं हम शरीर जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। और आत्मा क्या है? वो परमात्मा के एक अंश है। और ये जो शरीर है ये क्या है? ये आत्मा का एक कवर है या कपड़ा है या चोला है, जैसे भी है वो ही है। तो जब हम अपने आप को आत्मा का अंश मान लेंगे और आत्मा परमात्मा के निर्देशित मार्ग पर चलते रहेंगे तो जो हमारा जो जीवन है ना वो इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष और मुक्ति को अनुभव करेगा। ये जो मोक्ष और जो मुक्ति है ये जीवन की बातें हैं, जीवन के बाद की बातें हैं। और जीवन के बाद क्या होना ये हमें क्या पता है ना। यदि हम जीते जी आनंद और शांति को एक्सपीरियंस करते हैं ना तो वो ही हमारे लिए दुखों और कष्टों से मुक्ति है। भागवत गीता जैसा मेरे को लगता है ना ये लाइट हाउस है। हमारे जीवन जीने का क्या तरीका होने चाहिए उस पे प्रकाश डालती है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, है ना। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि शरीर से जो जुड़े हुए कर्म है, कारण है, इसी में ही फंसे रहते हैं कि हमने ये कारण कर दिया, ये किया काम तो उसका कारण ये था, है ना। अगर हम इन सब बातों को समझ पाएंगे तो ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है ना इसका जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमें प्रभु के निर्देशित जो आदेश है ना उन पे चलते रहना है और अपनी ड्यूटी को कैसे निभाना है। जो कंपटीशन है, ये जो विकार है ना, शरीर से जुड़े हुए विकार हैं या शरीर और मन से जो हमारे लालच है, ये सबको छोड़ते हुए हमें खुश रहकर कैसे आनंद रहना है। जो चीज है हमारे पास उसमें आनंदित रहना है, ना कि जो जो नहीं है उसके लिए कंप्लेंट करते रहें या जो दूसरे के पास है उसकी इच्छा करते रहें। तो वाकई में जैसे आप बताते जा रहे हैं तो ये लगने लग गया है कि जो भागवत गीता है ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए रोड मैप है कि कैसे चलना है, क्या करना है। तो अगर हम इन पे चलते रहे तो जीते जी हम आनंद का अनुभव करेंगे और यही हमारे लिए मुक्ति या मोक्ष के समान होगा, ऐसी मेरी ऐसी धारणा है। तो बस इतना ही। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रिव्यू दिया आज आपने, जो भी मैंने बताया आपको एक्चुअली समझा आपने कि देखो आपने जैसे आपने कहा कि भगवान ने हमें बॉडी के रूप में ये इंस्ट्रूमेंट दिया है ना, बॉडी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट दिया है और हम इसमें उलझे पड़े हैं, इसके बनाए रिश्तों में, इसी को सजाने संवारने में। किसी ने मुझे अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए, किसी ने बुरा बोल दिया तो दुखी हो गए, है ना। मतलब इसी में उलझे पड़े हैं, इस बॉडी और इस बॉडी के बनाए और रिश्तों में, है ना। हमें क्या लगता है बस यही हमारी लाइफ है, इसके ऊपर हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अरे मुझे बहुत हमेशा लगता था कि मुक्ति बाद की बात क्यों करते हैं लोग, या मोक्ष की बातें बाद, डेथ के बाद तो हमें क्या ही पता क्या होने वाला, किसी को भी नहीं पता। आज तक किसी ने नहीं बताया कि हम डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो मैंने भी भगवद गीता से यही समझा कि भाई जीते जी सुखों को महसूस करना ही मुझे लगता है कि मुक्ति है। भाई अपने हम महसूस कर लिया, हमने अपने कष्टों से मुक्ति पा ली हमने, तो वही तो मुक्ति होगी ना। इतना दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, ओवर थिंकिंग की हैबिट में, पास्ट फ्यूचर में घुसे पड़े हैं, तो उनसे मुक्ति पाना ये तो एक्चुअली मोक्ष है और मुक्ति है, भगवान के धाम जाना, यही तो हो गया। या जीते जी भगवान को हम महसूस कर रहे हैं, जीते जी भगवान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उनकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, किसी मंदिरों में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, घर में ही आप हर कुछ महसूस कर रहे हो ना, है ना। आधा घंटा मंदिर जाना तो आसान है, लेकिन घर में वो माहौल बनाना टफ है, इसलिए हमें मुश्किल लगता है ये वाली बातें। भगवत गीता के बातें क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, अपने आप को बहुत जगह तोड़ना पड़ता है, पता है, लेकिन फिर भी चुप रहना पड़ता है, और कई जगह बोलना पड़ता है मतलब. तो भगवत गीता राइट नॉलेज है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है फ्रेंड्स, है ना, रोड मैप है जैसे कि आप बता रहे हो कुमार दीदी, है ना. बहुत ही बढ़िया रिव्यू, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच. हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल.
हरी हरी बोल एवरीवन. हाँ जी महाराज जी, आज का सत्संग भी बहुत ही दिव्य और बहुत ही आनंदमय रहा. आपने आज हमें भगवत गीता की क्या शिक्षा मिली है, हमें भगवत गीता की लर्निंग से इस टॉपिक पे हमें गहराई से समझाया. तो मोना जी, आपके साथ हमारी भगवत गीता की ये थर्ड रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं भी बस इतना ही कहना चाहूंगी, भगवत गीता जो कि प्रभु की एक दिव्य वाणी है और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने हमारे प्रभु ने हमारे हर क्वेश्चन का हमें जो है अर्जुन के माध्यम से हमें आंसर मिला है. क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से पहले सच में फ्रेंड्स हम सब जो है अज्ञानता के अंधकार में ही डूबे हुए थे. अपने आप को हमने दुनियादारी में माया में हम बुरी तरह से फंसे हुए थे. मेरा, ये मेरा है, ये रिश्ते मेरे हैं. और सच में मोना जी भी सत्संग में बार बार ये बात हमें बताते हैं कि हमारे आसपास जो भी लिमिटेड 10, 12, 20 जो भी लोग होते हैं, हम अपनी लाइफ जो है उसी के अनुसार जो है गुजारते चले जाते हैं और कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते कि हमें हमें ये प्रभु ने ये जो हमें जीवन दिया है ये हमें किस लिए मिला है. फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि कोरोना काल में मेरे मन में जब ये आया कि यार हमारी यही लाइफ है, तो सच में कहने का भाव ये है कि भगवत गीता पढ़ने से और मोना जी के सत्संग से सच में हमारे मन का जो अंधकार, जिस अंधकार में हम डूबे हुए थे, उससे हम बाहर निकल पाए हैं और हमने सच में ये जाना है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला है. और हमने इस बात को अब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट किया है, क्योंकि अब तक जो है हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही गुजरा है क्योंकि हमें जो है सही गाइडेंस नहीं थी. अब प्रभु श्री हरि की वाणी को सुनकर भगवत गीता की रीडिंग से हमने जो है प्रभु के साथ अपना ट्रू कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है. और सच में भगवत गीता से हमें अब लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु हमें अंदर से जो है प्रकाश दे रहे होते हैं और हम सही दिशा में ही जो है मार्गदर्शन करते हैं. तो सच में फ्रेंड्स, भगवत गीता पढ़ के और मोना जी के सत्संग से जुड़के ही हमने आध्यात्मिकता की ओर अपना पहला कदम रखा है. इससे पहले हम नेम और फेम में फंसे रहते थे कि मेरा नाम हो जाए वही, या फिर अपने आप को मतलब कि सोसाइटी में कैसे हमारा नाम हो, ये सब बातें जो है अब हमें, इन बातों से हम उभरे हैं. अब यही लगता है कि प्रभु ने हमें ये जो अमूल्य जीवन दिया है इसे हमें अब और जो है इस तरह से नहीं गवाना है, क्योंकि हमने इस बात को समझा है कि भगवत गीता पढ़ने से हमारे मन के जो विकार हैं वो भी धीरे धीरे जो है कम हो रहे हैं और हमारी बुद्धि जो है वो दिव्यता की ओर बढ़ रही है. और भी जो हमारे मतलब जो भी नेगेटिव हमारे मन में जो हमारे चल रहा होता है, प्रभु कृपा से हम बड़ी जल्दी उस अंधकार से ऊपर उठ जाते हैं और फिर से जो है सही दिशा की ओर हमें प्रभु चलने के लिए गाइड करते हैं. तो कहने का भाव यही है कि आज के इस सत्संग में हमने यही समझा कि भगवत गीता के अध्ययन से ही हमने ही जाना है कि हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है और परमात्मा का एक अंश है. और अब तक हम जो है प्रभु के साथ अपना जो है जो हमारा कनेक्शन है कि हम परमात्मा का अंश है, इस बात को हम भूल बैठे थे. इसलिए हम जो है अपने मतलब लाइफ को भी सही तरह से नहीं जी पा रहे थे. अब हमने ये समझा है कि हम परमात्मा का ही अंश है और हमें वही कर्म करने हैं जो कि प्रभु को प्रिय है, ताकि हम इस सारे संसार को एक वासुदेव कुटुंब की तरह देख सके, प्रभु की अपनी गुड बुक्स में आए और जो है अपने लाइफ में अब जो हमें मतलब अब इस टाइम हम अगर अपना आत्म साक्षात करें तो अब हमें लाइफ में जो है परमानेंट हैप्पीनेस पीस भी फील हो रही है. पहले हमें ये लगता था कि अगर हम मंदिर या गुरुद्वारे हो आए तो वहां पे शांति है और फिर से हम डिस्टर्ब हो गए छोटी छोटी बात को लेके. तो अब प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से हम सब इन बातों से ऊपर उठे हैं और भगवत गीता की जो भी शिक्षाएं हैं उससे हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का भी प्रयास कर रहे हैं. हरी हरी बोल जी. हरी हरी बोल.
बहुत ही सुंदर लर्निंग्स नीना जी आपने आज शेयर की हमसे, थैंक यू सो मच. और जैसे कि आपने कहा कि हम सबका यही हाल था, हम सब ही खोए हुए थे दुनियादारी में, है ना. मतलब हाल ये था कि मेरे हस्बैंड खुश तो मैं खुश, मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश, मेरे पेरेंट्स खुश तो मैं खुश, है ना. अगर वो दुखी, अगर मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होगी या मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरे बच्चों ने मुझे कुछ बोल दिया, तो मैं दुखी, दो तीन दिन दुखी हूँ फिर मैं, कई बार तो खाना भी नहीं खाना, ये हाल होते थे हमारे, है ना. मतलब अपने खुशियों का अपने दुखों का जिम्मेदार हम दूसरों को ठहराते हैं कि कोई मुझे आके खुश करेगा। हम लेडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि हमें क्या लगता है कि कोई और आके मुझे खुश करेगा। मेरा हस्बैंड मेरे से अच्छी बात कर लेगा, मेरे पेरेंट्स मेरे से अच्छी बात करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बच्चे मेरे से अच्छी बात कर लेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। अरे ऐसा क्यों? हमें अपनी आत्मनिर्भर बनना है फ्रेंड्स। आत्मनिर्भर मतलब खाली सेल्फ डिपेंडेंट खाली ये फाइनेंशियली नहीं होता ना। अपने जो फालतू की सोच है जो अपने हमने बनाए हुए हैं मिथ की कोई और आके हमें खुश करेगा, ऐसा क्यों? उल्टा हम दूसरों को खुशियां बांटे ना। अगर वो व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं कि वो आके मुझे खुश करेगा तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? उल्टा मैं अपना जीवन ऐसे जीऊं कि वो खुश हो जाए या नहीं भी खुश होता तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा किसी की खुशी या किसी के दुख से? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे अपना जीवन बेस्ट वे में जीना है, बस दैट्स ऑल। उसमें फिर चाहे दुख आए चाहे सुख आए मुझे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। कोई और नहीं मुझे खुश करेगा या कोई और नहीं मुझे दुखी कर सकता। पहली बात तो हमें ये समझनी है फ्रेंड, अपने माइंड को इस बारे में स्टेबल करना है। और सच में ये बात खाली बात नहीं, अगर हम सोचने लग जाएंगे ना तो वाक्य प्रतिशत में हमारे अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएगा। ये चीज आएगा, दिन में 10 बार गुस्सा आएगा, जब जहां 15 बार आता था 10 बार हो जाएगा, फिर वो 7 बार हो जाएगा, वो 5 बार हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो गुस्सा ही आपका। आप अंदर सेंसर होंगे, बाहर से आप गुस्सा कर रहे होंगे। कई बार गुस्सा करना ही पड़ता है ना, कई बार जानबूझ के भी गुस्सा करना पड़ता है बच्चों को कि भैया हम तुम ऐसा कर लो या कुछ है, अंदर से पता होता है यार मुझे क्या बोलना है, मतलब अवेयरनेस का गुस्सा कर रहे होते हैं। तो उस गुस्से का और जो हम अनोइंगली जो गुस्सा कर रहे होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हमेशा ये सोचना हमें अपने खुशियों और अपने दुखों के जिम्मेदारी हम खुद है, और मैं ही हूँ जो मैं खुश रह सकती हूँ या मैं दुखी रह सकती हूँ। सिंपल बात है फ्रेंड्स। और भगवद गीता से हम पूरा ये हम सीखते हैं। अगर पूरा एक आप करोगे अच्छी तरह से, एक कोर्स पूरा करो ना, है ना, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बात कर सकते हो। लेकिन आप हमेशा ये बोला जाता है कि एक कोर्स कंप्लीट कोर्स आपने करना है, चाहे आपको कहीं जाना पड़ता है कुछ करना पड़ता है तो आप बीच में अपना रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, है ना। तो इस तरह से हमें चलना है नित्य निरंतर, इसलिए बोला जाता है कि नित्य निरंतर चलना है ना। थैंक यू सो मच नीना जी। हाँ जी फ्रेंड्स, अब कोई और बात करना चाहता है, कोई लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल एवरीवन।
हाँ जी किरण जी।
मोना जी, मैं आज मैंने लेट ही सत्संग ज्वाइन किया, सॉरी, बट जितना भी मेरे को समझ आया आज भागवत गीता की शिक्षाओं के बारे में बताया आपने, तो मैं अपना बताऊं, इस भागवत स्टूडेंट्स होने के पहले जब आपका सत्संग नहीं सुनती थी तो लास्ट फर्स्ट रीडिंग के लास्ट 2 चैप्टर से मैंने सुना था, आई थिंक 17-18। तो उसके बाद आप यही टॉपिक समझाते थे जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना था सेकेंड रीडिंग, तो आप तब मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आते थे। तो ऐसे बॉडी मटेरियल पे मैं बात करूं तो मैं कोई 2 टाइम की पूजा पाठ को सोच रही थी कि मैं बड़ा कुछ कर रही हूँ, कि बहुत है, मेरे जितना कोई नहीं करता। तो जब मैंने ये टॉपिक ही समझ नहीं आते थे, आज ऐसे समझाते तो अंदर से झंझोड़ता मन कि भाई कहाँ है हम, कौन है हम, ये समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं किया आज तक मैंने। तो तब ये टॉपिक नहीं समझ आते थे। तो जैसे मैंने भागवत गीता आपका स्टूडेंट बनी तो आप इतनी सरल भाषा में हमें समझाते हो कि उसके लिए वर्ड नहीं है। बेस्ट हो आप मोना दी, बहुत अच्छे हो आप, तो इतने अच्छे से समझाते। मेरे को भागवत गीता पढ़ते 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 कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, तो फिर मैं अपने आप को उससे कंपेयर करती थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या किया मैंने जीवन में, कौन हूँ मैं। तो अगर उस टाइम ये नहीं भाई बातें कर ली, ओवर थिंकिंग कर ली या कुछ भी, किसी की बातें कर ली, बुराई करनी, ये सब मेरे लिए बुरा नहीं था। अब की बात करें तो भागवत गीता बढ़ते बढ़ते भगवान का नाम कहने को तो बहुत इजी है कि हम बेस्ट वे में सारी ड्यूटियां करें, भगवान जी की ड्यूटी समझ के करें, तो उसके बाद साथ में गुनगुनाए होते हैं, ये सब करना शुरू किया, पर बहुत मुश्किल है ये सब जो चीजें आज हमें आई है कि नहीं भाई दूसरों में बुराई नहीं देखनी है, हम खुद जैसे होते हैं हम दूसरों को उसी दृष्टि से देखते हैं, जैसे हमारे भाव है भगवान के दर्शन हमें वैसे ही मिलेंगे, ये आज समझ आते हैं। तो अगर हम आज कोई बात हो जाती है तो अंदर से एक आवाज आती है कि क्या कर रही है, कहाँ है, गिल्ट, वो चीज आपके सत्संग से आई है। तो आज बहुत सारी शिक्षाएं दी आपने, तो अभी हमारी थर्ड रीडिंग स्टार्ट हो रही है, उसके पहले जो टॉपिक आप करवा रहे हो, इतना मजा मन होता है कि यही बातें हैं जो हमें डेली लाइफ में समझनी है। इस जो मन हमारा है तो जो करवाता है हमसे, नहीं भाई टीवी देख लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, जो भक्ति से रोकता है, मानना तो करती थी बट मेरे को इतना मिठे था जो आपने क्लियर किया कि भाई कौन से भगवान जी की पहले करनी है, ये भगवान रूठ जाएंगे, ये भगवान रूठ जाएंगे, तो मैं सबकी एक एक करती फिरती थी। आज आपके समझाने के माध्यम से मेरे पे इतना असर है कि मैं समझ गई हूँ कि कुछ अलग नहीं है, एक ही शक्ति है, जिसको मर्जी मान लो। अगर आप श्रद्धा भाव दे रहे हो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ये सांस से भी भगवान की दी हुई है, तो हम मायापति को पूज रहे हैं तो माया की जरूरत नहीं है। तो अगर हम मायापति के पीछे चलेंगे तो सब कुछ वही है। तो आज पैसे, पहले मैं लिस्ट लेके मंदिर जाती थी जहाँ सत्संग, ये होगा वही होगा, नहीं भगवान, हाँ आप कहते हो ना भगवान हमें जहाँ फंसे हम सबसे पहले उसी चीज से हमें निकालते, सच में उसी चीज से निकाला। और धीरे 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 आज समझ में आती है, बहुत सारे चलते चलते भगवान के रास्ते पर स्पिरिचुअल जर्नी चलते चलते रिश्ते पीछे छूट गए, जिनसे हम ढेरों बातें करते थे, तीन तीन घंटे पता नहीं चलता था कि कौन सी बातें हो रही हैं। आज वो रिश्ते चले गए बट फिर से आ रहे हैं, उनको भी समझ आ गई कि नहीं भाई यही बात अच्छा है, जो हमारा स्पिरिचुअल बात है यही सबसे बेस्ट है। तो मेरे को भी ये समझ आई, जो नहीं करते हैं आजकल कि ये बातें नहीं अच्छी, तो मैं सबर लेके बैठी हुई, कोई बात नहीं, भगवान जी ने सारा गोल है, सब कुछ करके समय ऐसे परिवर्तन होता रहते हैं कि जहां हम पहले से खड़े हैं वहीं पे आ गए हैं। ये सब आपकी शिक्षा का असर है। थैंक यू मोना दी, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज किरण जी, बहुत ही अच्छा बोलते हो आप, बहुत आनंद आता है हमें आपको सुन के। और दूसरी बात, अब किसी ने ये नहीं बोलना मेरा सत्संग, सबने बोला हमारा सत्संग है ना, मेरा कोई सत्संग नहीं है भाई, आप लोगों से ये सब सत्संग है, आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं होती, किसको सुनाती फिरती मैं, है ना। तो हमारा सत्संग है ये, हमारा स्पिरिचुअल लर्निंग ग्रुप है ये, है ना। तो बिल्कुल, अगर हम करते चलेंगे, देखो चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी कुछ होने वाला है, सिर्फ हम सुनेंगे है ना, या फिर हम सुनेंगे भी नहीं, सुनते भी ढंग से नहीं हम लोग, है ना। सुनेंगे एक दिन, सुन लिया एक महीना, फिर बीच में गायब हो गए, है ना, सुन लिया दो तीन महीने, फिर बीच में नहीं सुना प्रॉपरली, अच्छी तरह से हमें सुनना है, है ना। ये जैसे किरण जी है, ये हमारे साथ आप भी फर्स्ट सत्संग में जुड़े थे ना हमारे साथ, हरी बोल, फर्स्ट सत्संग में जुड़े थे ना, थोड़ा लेट जुड़े थे शायद, है ना,
लास्ट में जुड़ी थी,
हाँ जी, है ना। तो किरण जी जैसे जो अभी रिव्यू दे रहे हैं तो काफी पहले के जुड़े हुए हैं, तो वो नित्य निरंतर रहते हैं, मैक्सिमम 90-95% उनकी अटेंडेंस रहती है। तो नेचुरली जब आप चलोगे, सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा तो इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट तो मिलने ही मिलने हैं, पहले तो सुनना ही होता है ना। लेकिन सुनेंगे नहीं हम और फिर हम उसमें गलतियां निकालेंगे, और हम फंसे कहां होते हैं, यार मैं तो इस भगवान को मानती हूँ, मैं इस भगवान को मानती हूँ, हमें सबको छोड़ देना यार। अब मैं आपको अपना बताती रहती हूँ ना, मैं शिवजी भगवान को मानती थी, ठीक है हूँ भी, अभी भी मानती हूँ, सॉरी मैंने छोड़ दिया, शिवजी भगवान को, माता रानी सबको मानती हूँ मैं, है ना, अभी भी कृष्ण भगवान की भक्ति ऐड होगी, बस इतना सा हुआ है ना। भगवान खुद ही कह रहे हैं भाई सब एक ही है, तुम किसी भी रूप में मुझे पूछते हो तो अल्टीमेटली मुझे ही पूछ रहे हो, है ना। तो मतलब किसी को भी पूछ लो यार, हमें मेन है उनकी इंस्ट्रक्शंस को सुनना, भगवद गीता की गाइडेंस लेना, कम से कम हमें ये होना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सारे मिथ छोड़ दो, है ना। एक अच्छी लाइफ जीनी है तो एक थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो हमने अपनी मटेरियल लाइफ में भी तो हम मेहनत करते हैं ना, और ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हमने मेहनत की है ना, तब हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल स्टडीज हम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बस जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको ध्यान से सुनना है, सिर्फ सुनना है, भगवान कह रहे हैं सिर्फ सुनो, श्रद्धा से सुनो, मेन है श्रद्धा से सुनो, बिना किसी मिथ के, बिना किसी इफ बट के, बिना किसी छल कपट के, अंदर कोई ऐसा भावना मत रखो किसी के बारे में या भगवान के बारे में, चुपचाप आप सुनोगे तो हमें 100% है कि हमें उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। ये जो तीन तीन रीडिंग में आप बैठे हुए हैं, मैं कितनी बार 2017 से सुन रही हूँ भगवद गीता, है ना, तो मेरे को क्या टाइम पास लग रहा है, मुझे क्या, मेरे जीवन बदल रहा है यार, मुझे मजा आ रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है जो मुझे पहले कभी नहीं मिला, जो मैं दुनियादारी में आनंद ढूंढती थी, अब मैं अकेले में खुश रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे से बात करता है या नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घंटों घंटों अकेले रह सकती हूँ, है ना। थैंक यू सो मच किरण जी। हाँ जी, अब हम फ्रेंड्स भजन की तरफ चलते हैं, गुप्ता जी आप भजन गा सकते हो, आज आपके टर्न है, हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज मेरा भजन है कि जब हम गलतियां करते हैं तो हम माफी नहीं मांगते थे पहले, अब जब भगवत पढ़नी शुरू किया तो पता चला कि जब गलतियां करते हैं तो हमें माफी भी मांगनी चाहिए। तो मेरा भजन, कर दो क्षमा किशोरी अपराध मेरे सारे कर दो क्षमा क्षमा अपराध मेरे सारे बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे कर दो क्षमा क्षमा अपराध मेरे सारे तुम्हारी कृपा से क्षमा चलती है सारी सृष्टि तुम्हारी कृपा से क्षमा चलती है सारी सृष्टि सदियों से रो रही हूँ तारो कृपा की दृष्टि उद्धार और पतन है सब हाथ में तुम्हारे उद्धार और पतन है सब हाथ में तुम्हारे कर दो क्षमा किशोरी अपराध मेरे सारे बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे सपने में भी थकूं ना श्री राधा नाम जप से उस सपने में भी थकूं ना श्री श्यामा नाम जप से मैं सवारू अपना जीवन गहवर में घोर तप से मैं सवारू अपना जीवन गहवर में घोर तप से मेरी भी झोपड़ी हो बरसाने में तुम्हारे मेरी भी झोपड़ी हो बरसाने में तुम्हारे बड़ी आस लेके आई श्यामा दरबार में तुम्हारे कर दो क्षमा किशोरी अपराध मेरे सारे रसिकों के झुंड वो में मुझको छिपा ले राधे रसिकों के झुर मुटों में मुझको छिपा ले श्यामा चेतन की चाह ना हो जड़ ही बना लो राधे चेतन की चाह ना हो जड़ ही बना लो राधे जी भर परख लिए हैं संसार के सहारे जी भर परख लिए हैं संसार के सहारे बड़ी आस लेके आई श्यामा दरबार में तुम्हारे कर दो क्षमा किशोरी अपराध
मेरे सारे इतने गुनाह किए हैं, मेरे होंठ सिल गए हैं, फिर भी कृपा है तेरी, तेरे दास मिल गए हैं, फिर भी कृपा है तेरी, तेरे दास मिल गए हैं। हरिदास रो रही है दोनों भुजा पसारे, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे, कर दो क्षमा क्षमा दरबार में तुम्हारे, बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे।
हरी हरी बोल। एक ही वर्ड है मेरे पास ममता जी, आनंद ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच। तो प्रेयर्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, जय श्री कृष्ण।